आज का रात्रि क्लास है 15/5/1965। जरूर कोई एक व आधा या दो समझने वाले होंगे, और बाकी सब न समझने वाले होंगे। विवेक कहता है कि हर एक अलग अलग होवे तो बेहतर होता है, क्योंकि हर एक कीमत अपनी अपनी होती है। भले बाप के तीन बच्चे होंगे, तीनों की मत अलग अलग होगी। असल कायदा कराची में ये था कि एक एक को अलग अलग करते थे, क्योंकि एक बैठा होगा उनको तुम योग में बिठाएंगे और दूसरा योग में या याद में नहीं रहेगा, तो उस समय में वो वायुमंडल को खराब कर देंगे। परंतु यहां इतनी जगह तो है नहीं, यहां तो झुंड आते हैं, क्योंकि ये यात्रा का स्थान है। बाकी अगर दो हों और उनसे जब फार्म भराया जाता है, कुछ फर्क होता है तो समझाने के लिए अलग अलग कर देना चाहिए, नहीं तो एक की बुद्धि कहां न कहां दौड़ती रहेगी। जैसे यहां कभी कभी आते हैं, जो नए आते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं, तो जिनका योग बाप के साथ ठीक नहीं होगा उनकी क्या हालत होगी। की हालत ये होगी कि बाबा बोलते रहेंगे और वो ये ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो यहां नयों की खास संभाल की जाती है, जो नए आए हैं उनमें दो या तीन हो तो देखना है कौन का अटेंशन जाता है और कौन का अटेंशन नहीं जाता है, कौन लायक है और कौन नालायक है। लायक और नालायक देखा जाता है ये अविनाशी ज्ञान खजाना लेने में। तो लायक और नालायक, नालायक को तुम कहो कि तुम नालायक हो इस चीज को पाने के, ये कहना अच्छा है। और अगर उनको नालायक कह दो तो वो बिगड़ पड़ेगा। बात तो एक ही होती है, नालायक और नालायक। जो लायक होगा वो तो अटेंशन से सुनता रहेगा, क्योंकि बाप देखते रहते हैं कि किसका अटेंशन जाता है और किसका अटेंशन नहीं जाता है। जिसका अटेंशन नहीं जाता होगा تو ان کی شکل، ان کا منہ، چلن ایسی ہوگی، یہاں وہاں دیکھتا رہے گا، ٹھیک سے اٹینشن نہیں رہے گا. نہیں تو بچوں کا اٹینشن تو باپ کی طرف رہے گا کہ باپ ڈائریکٹ ہم کو کیا بولتے ہیں. سننے والا نہیں ہوگا تو ان کی بدھی یہاں وہاں پھرتی رہے گی، اور کان بھی ادھر ادھر پھرتا رہے گا. یہی نہیں، آنکھیں بھی ادھر ادھر پھرتی رہیں گی، منڈراتی رہیں گی. کتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اویناشی خزانہ لینے کا ادھیکاری ہے، لائق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بڑا اتم خزانہ ہے. اس خزانے کا شوق کوٹوں میں کوئی اور کوئی میں بھی کوئی کو ہوتا ہے. تو اتنی اچھی طرح سے دھارن کرنا چاہیے، جو بس سنا اور ان کو پھر جا کر کے ریوائز کر کے لکھ دیا، پھر ان باتوں کو 5-7 دفعہ اچھی طرح سے جانچا، ان میں جو بھی تنت ہو وہ دھارن کر لینا چاہیے. جو پرشارتھی ہوگا وہ اتنی محنت کریں گے تب سروس کے لائق بن سکتے ہیں. ہاں، کوئی کوئی بہت اچھے بدھیمان ہوتے ہیں جن کی بدھی میں جھٹ بیٹھ جاتا ہے، پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ برہمن کلبھوشن کوئی نزدیکی کا ہے، یا تو برہمن کلبھوشن نزدیک کا ہوا یا دیوتاؤں میں نزدیک کا ہوا. ایسے ہوتے ہیں نا جو سمجھانے والے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو پرکھ سکتے ہیں کہ اچھا سمجھتے ہیں، ان کی بدھی میں کچھ بیٹھا ہی نہیں ہے. تم ابدھوت کے ساتھ بیٹھے تھے، کسی سے پوچھا، کسی بہن نے کہا تھوڑا ٹائم بیٹھے تھے. وہ ابدھوت آج تو شاید نہیں آیا ہے. بہن نے کہا تو پھر دوسرا سنیاسی لے کر آیا تھا، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم بیٹھی تھی، تو کہتا تھا مجھے سنیاس کیے ہوئے 10 ورش ہوا، میں نے میٹرک پڑھا تھا، میرا چھوٹے پن سے ہی سنسکار ایسا تھا. تو دیکھو سنیاسیوں کا بھی سنیاس لینے کا سنسکار ہوتا ہے نا. جب جنم لیں گے اور تھوڑا بڑے ہوں گے تو ان کا سنسکار ایسا ہی نکلے گا، کہیں نہ کہیں بھاگ جانے کا، ان کی دل ہی نہیں لگے گی. پڑھائی پر بھی بہتوں کی دل نہیں لگتی ہے. آتما کو کہے گا نا، باپ تو کہے گا بچوں کو، گھڑی گھڑی بچے کہتے رہیں گے، اور دنیا میں بچے تو سب کہتے ہیں، چاہے باپ ہو، کاکا ہو، چاچا ہو. یہ تو بچے سمجھتے ہیں کہ شیو بابا ہم بچوں کو کہتے ہیں، तो तुमको टेव पड़ जानी चाहिए कि हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा ये सब बातें समझाते रहते हैं। हमारी आत्मा की बुद्धि में ये सारी बातें धारण होती है, ये भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा ही शरीर में कर्तव्य करती है। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस में पास होना कठिन है, क्योंकि जो बात आधा कल्प में कभी ध्यान में नहीं आई कि मैं आत्मा हूं, यही समझते रहे मैं शरीर हूं देह हूं, ये बात बुद्धि में ही नहीं आई मैं आत्मा हूं और शरीर से मैं आत्मा सारे कार्य कर रही हूं, सब प्रकार के पार्ट बजाए रही हूं, ये किसकी बुद्धि में पूरा आधा कल्प ठहरता ही नहीं है। कब से? पूरा माने कब से? द्वापर के आदि से लेकर कलयुग अंत तक, और उससे पहले? द्वापर से पहले तो सब देवताएं थे ही आत्मिक स्थिति में। 15/5/1965 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप ने समझाया है कि सतयुग में उन लोगों की बुद्धि में है कि मैं आत्मा हूं। किन लोगों की बुद्धि में? देवताओं की बुद्धि में। इस शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूं, जब बुढ़े होंगे हमको फिर शरीर छोड़ना होगा, फिर नया शरीर लेना होगा, बाकी पार्ट का फिर भी कोई पता नहीं है। किसको? देवताओं को। भले वो अपन को आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, फिर भी उनको पार्ट का कोई पता नहीं कि आत्मा 84 जन्म का कैसे चक्कर लगाती है। पार्ट के लिए तो यहां भी बहुत कहते हैं कि हम यहां पार्ट डारी है, ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सब एक्टर्स हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाने के लिए कर्म क्षेत्र पर आए हैं। अब कौन सा पार्ट बजाने, ये भी कहते हैं कि सुख दुख के खेल का पार्ट है, परंतु वो सुख दुख के खेल का पार्ट कैसे है? दुख सुख नहीं कहते, क्या कहते हैं? सुख दुख का पार्ट कहते तो हैं, परंतु ये नहीं जानते कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने वाली आत्माओं को पहले आधा टाइम सुख होता है और आधा टाइम दुख होता है। कह देते हैं सुख दुख का खेल है, कोई भी नहीं जानते हैं। जैसे कोई बहरे होते हैं तो ऐसे करके सुनते हैं, आत्मा वास्तव में इन कानों से अटेंशन से सुनती है। बहरे होंगे तो हाथ कान में है, क्या कहा, तो समझते हैं हमारा कान सुनता है। कान सुनता है कि कान के द्वारा आत्मा सुनती है? आत्मा सुनती है। आत्मा हाथ रखेगी कि हम इन कानों से क्या सुन रही हूं। अभी तुमको ख्याल है कि हम आत्मा इन कानों से परमपिता परमात्मा से क्या क्या सुन रहे हैं? ऐसे तो कोई भी पाठशाला स्कूल या सत्संग नहीं है जिसमें सुनने वाले बच्चे ऐसे समझें और सुनाने वाला भी ऐसे कहे कि मैं इस शरीर द्वारा इस आर्गन्स द्वारा तुम आत्माओं को समझा रहा हूं, क्योंकि इनको ही कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का सन्मुख मेला। किसको? कि बाप सुनाते हैं और बच्चे सुनते हैं, क्योंकि भगवान राजयोग पढ़ाएंगे तो भी सन्मुख पढ़ाएंगे ना, और थोड़ा टाइम पढ़ा के चले जाएंगे, یا لمبے ٹائم پڑھائیں گے ہیں؟ بہت لمبا ٹائم پڑھائیں گے نا، تھوڑا ٹائم پڑھا کر کے تو نہیں چلے جائیں گے، کسان 69 میں شریر چھوڑ دے چلے جائیں، ایسے تو نہیں، 100 ورش کا سنگم ہے تو لمبا ٹائم پڑھائیں گے نا۔ گایا جاتا ہے جہاں تک جیئیں گے وہاں تک پیئیں گے، کاہے میں جیئیں گے؟ دیہ ابھیمان میں جب تک جینا ہے تب تک یہ گیان آتما کا، پرماتما کا، سرشٹی چکر کا گیان لینا ہے۔ تو تمہارا بھی ایسے، جہاں تم کو جینا ہے وہاں تک پڑھنا ہے۔ دیکھو کتنے لوگ بڈھے بھی ہوتے ہیں، کوئی پوچھے کیا بڈھے بھی پڑھتے ہیں؟ کہنا چاہیے ہاں، اسی ایشوریہ گیان کو بڈھے بھی پڑھتے ہیں۔ جب بان پرست اوستھا میں جاتے ہیں تب سنیاسیوں کے پاس جا کر شاستر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ بھی تو پاٹشالا ہو گئی نا۔ ہاں وہ ہے منشیوں کے بنائے ہوئے شاستروں کی پاٹشالا، کیونکہ ابھی مرنے کا ہے، وان پرست اوستھا ہے، اس لیے ست کا سنگ چاہیے، سادھو سنت کا ست سنگ کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہ راستہ بتائیں گے، ایسے سمجھتے ہیں۔ اب وہ کہاں کا راستہ بتائیں گے؟ کہیں گے بھگوان سے ملنے کا راستہ، پرنتو وہاں ملنے جانا تو ہے نہیں نا، کیونکہ پنرجنم تو ضرور اسی سرشٹی پر لینا ہے۔ اس سمے میں تم بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس مرتیو لوک میں تم کو پنرجنم نہیں لینا ہے۔ کیا وہ کہتے تو ہیں کہ مکتی مل جانے کے بعد پنرجنم نہیں ہوتا، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پنرجنم لینے کے لیے اس سرشٹی پر کبھی آنا ہی نہیں پڑتا، سدا کال کے لیے مکتی ہو جاتی۔ لیکن باپ کہتے ہیں سدا کال کی مکتی کوئی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہاں سدا کال کی مکتی کا مطلب ہے کہ اس دکھ کی دنیا سے بہت لمبے سمے تک کے لیے مکتی ہو جاتی ہے، اس دکھ کی دنیا میں نہیں آویں گے۔ کہاں آویں گے؟ جب بھی آویں گے رنگ منچ پر تو سکھ کی دنیا میں آویں گے۔ تو اس مرتیو لوک میں تم کو پنر جنم نہیں لینا ہے۔ سادھو سنت مہاتما کوئی ایسے نہیں کہیں گے کہ ابھی تم کو اس مرتیو لوک میں پنرجنم نہیں لینا ہے، وہ خود اسی مرتیو لوک میں جنم لیتے رہتے ہیں۔ اب ایسی باتیں تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے، بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ ابھی اس مرتیو لوک میں جنم نہیں لینے کا ہے، ابھی امر لوک چلنا ہے ارتھات سورگ میں چلنا ہے، وہاں تو شری کرشن پوری میں چلنا ہے۔ جبکہ شری کرشن پوری میں چلنا ہے تو وہاں چلنے کے لیے ایسے شری کرشن جیسے گن بھی دھارن کرنا پڑے۔ کیسے گن ہے؟ سرو گن سمپن، سولا کلا سمپورن، سمپورن ہنسک، مریادا پرشوتم بننا پڑے، تو ایسے گن دھارن کرنے ہیں، کیونکہ وہاں یتھا راجا رانی تتھا پرجا، راجا بھی سرو گن سمپن سولا کلا سمپورن، تو پرجا بھی سرو گن سمپن سولا کلا سمپورن ہوتی ہے۔ بھلے یہ تو پرنس ہے، تو یتھا پرنس اور پرنس، تو بچوں کو وہاں بننا ہے، وہاں بننا ہے یا یہاں سے ہی بن کر کے جانا ہے؟ یہاں سے ہی سرگن سمپن بن کے جانا، ایسے بھی کہہ سکتے ہو۔ تو تم بچے تو دیکھتے ہو کہ بروبر جو پرنس اینڈ پرنسس بننے والے ہیں شیو بابا دوارا، ہم بھی تو پرنس اینڈ پرنسس بننے والے ہیں، जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो इतना प्रिंस प्रिंसेस बनेगा। कितना? कोई पहले बनेगा, कोई बाद में बनेगा। जो पहले बनेगा, पहले जन्म में सतयुग में आएगा, वो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण संपूर्ण इन मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा। दूसरे जन्म में आएगा तो 16 कला संपूर्ण रहेगा या कलाएं कम हो जाएंगी? हैं? कुछ न कुछ कलाएं कम हो जाएंगी, गुण भी कम हो जाएंगे, पवित्रता की पावर भी कम हो जाएगी। तो जो जैसा यहाँ पुरुषार्थ करे वैसा वहां दुनिया में पहुंचेगा। तो बुद्धि में ये रखना पड़े कि हम अभी यहां पढ़ते हैं प्रिंसेस या प्रिंसेस बनने के लिए। तो बाबा कभी पूछते हैं कि महारानी बनेंगे या महाराजा बनेंगे, तो कोई कह देते हैं महारानी बनेंगे, कोई कह देते हैं महाराजा बनेंगे। हैं? पुरुष होंगे तो अक्सर करके कहेंगे कि हम महाराजा बनेंगे। अब ऐसा है कि जो भी पुरुष होंगे वो महाराजा ही बनेंगे? हैं? महाराजा या राजा जो होता है वो किसी के अधीन होता है क्या? हैं? होता है? हैं? अधीन तो नहीं होता, लेकिन बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो जोरू के गुलाम होते हैं, और यहाँ जोरू के गुलाम रहे अंत तक, तो वहां महाराजा बन जाएंगे? हैं? नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो पुरुष ऐसे अक्सर कह देते हैं हम क्या बनेंगे, कि हम तो पुरुष हैं तो हम तो महाराजा बनेंगे। अरे स्वभाव संस्कार के आधार पर बनेंगे या शरीर के आधार पर बनेंगे? स्वभाव संस्कार के आधार पर बनेंगे। ऐसे ही फीमेल होगी तो अक्सर कहेगी हम महारानी बनूंगी। हैं? ऐसे क्यों कह देंगे? देह के आधार पर क्यों कहते? आत्मा में संस्कार होते हैं, स्वभाव होता है कि देह में होता है? आत्मा में होता है। तो बच्चों की बुद्धि में रहना है कि पढ़ने वाली मैं आत्मा हूं, और हमको क्या पढ़ना है, अभी हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हैं? क्या पढ़ते हैं? अरे राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कैसी पढ़ाई? राजा बनने वाली पढ़ाई। रानी बनने वाली पढ़ाई बताई कभी? हैं? राजा बनने वाली पढ़ाई बताई। तो स्त्रियां ऐसे क्यों कह देती हैं? कन्याएं माताओं से पूछा जाए तो ऐसे क्यों कह देती हैं कि हम तो रानी महारानी बनेंगी? अरे रानी बनेंगी तो भी राजा के कंट्रोल में रहना पड़ेगा कि नहीं? हैं? तो अधीन हुई या अधिकारी हुई? तो बाबा अधीन रहना सिखाते हैं। अधीन बनने के लिए सिखाने आए हैं? नहीं, बाबा तो कहते हैं मैं तुमको राजा बनाता हूँ। राजा किसी के अधीन होता है क्या? राजा तो किसी के अधीन नहीं होता। तो देखो ये सोचना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? राजयोग पढ़ते हैं, रानी योग नहीं, दास दासी योग नहीं, चांडाल चांडालनी योग नहीं। क्या पढ़ते हैं? प्रजा योग नहीं। हम प्रजा बनने वाले थोड़े ही हैं, हम तो राजयोगी हैं। बाप से हम राजयोग पढ़ते हैं तो राजा ही बनेंगे ना, चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो। पक्का रखना, हम गॉड फादर द्वारा पढ़ते हैं, हैं? और गॉड और गॉडेस बनने के लिए पढ़ते हैं। जैसे बैरिस्टर के सामने पढ़ते हैं तो बैरिस्टर और बैरिस्टर बैरिस्टर ही बनेंगे। तो ये भी एक इम्तान है, पढ़ाई का इम्तान होता है ना। भगवान वाच, तुम सो राजाओं का राजा यानी नरसे नारायण बनेंगे। तो उनको गॉड ही कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को कौन कहते हैं? गॉड ही कहते हैं। परंतु गॉड एंड गॉडेस कहना कुछ रंग है, क्योंकि यहाँ भारत खंड में गॉड एंड गॉडेस तो है ही नहीं है, जबकि सूक्ष्म वतन में देवी देवता हैं, तो फिर स्थूल वतन में गॉड एंड गॉडेस कैसे हो सकते हैं? गॉड तो देवताओं और मनुष्यों से ऊंचा रहेगा। इसलिए यहाँ गॉड एंड गॉडेस किसको नहीं कहा जा सकता है, जबकि इनसे ऊंचे तबके पर देवी देवताएं हैं, उनको देवता कहते हैं, उनके ऊपर में फिर गॉड है, हैं? देवताएं कौन से युग में? देवताएं 16 कला संपूर्ण कौन से युग में? सतयुग में। और सतयुग के ऊपर कौन सा युग? पुरुषोत्तम संगम युग। तो वहां जब हम रहते हैं तो उस समय सब बच्चे ही बच्चे हैं, वहां गॉडेज यानी फीमेल तो है नहीं, सभी बच्चे ही बच्चे हैं। कहां है? वहां गॉड के साथ गॉडेज नहीं, कहां? अरे संगम युग में गॉड गॉडेज कहेंगे कि बाप के बच्चे कहेंगे, बच्चे या बच्चियां भी? बच्चे। क्यों? क्योंकि बाप ज्योतिबिंदु और ज्योतिबिंदु बाप के सब हैं, बच्चे ही हैं, बच्चियां तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां शरीर है ही नहीं। ऐसी स्टेज बनानी है, कैसी? कि हम अपन को क्या समझें? हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ये बुद्धि में ना आए हम तो स्त्री हूँ, हम तो नारी हूँ, तो नारी से हमको क्या बनना है? है नारी से लक्ष्मी बनूंगी। अरे तुम नारी हो कि आत्मा हो? आत्मा हो, हम शिव बाप के बच्चे हैं, हैं? तो उनके ऊपर है, फिर गॉड है बच्चों के ऊपर। वहां जब हम रहते हैं तो उस समय सब बच्चे ही बच्चे, कहां? संगम युग में। वहां गॉडेस यानी फीमेल तो है ही नहीं, सभी बच्चे ही बच्चे, सभी आत्मा ही, और परमात्मा है। तुम्हारी केयर, तुम्हारी संभाल अभी कौन करते हैं? शिव बाबा। किससे संभाल करते हैं? अरे बात मत पूछो। किससे संभाल करते हैं? जिससे संभाल करते हैं ये बड़ा दुश्मन है। अब इस दुश्मन से बचाने के लिए शिव बाबा तुम्हारे लिए केयर टेकर हुआ, तुम्हारी संभाल करने वाला। पूछते रहते हैं बच्चे ये दुश्मन कौन? कौन दुश्मन? ये रावण दुश्मन कहां तुमको तंग तो नहीं करते हैं? हैं? कहां माने कहां? कोई स्थान में हैं? पहले तो मन के अंदर तंग करता है रावण, कहां पकड़ता है? हैं? पहले दिल को पकड़ता है, मन को पकड़ता है। तो मन को तुमको तंग तो नहीं करते हैं? हैं? तंग करते हैं तो फिर क्या होता है? पहले मन में तंग करेंगे फिर क्या होगा? हैं? फिर आंखों को तंग करेंगे, आंखें चंचल होंगी, इनको देखें, रावण को देखें, रावण का ऐसा मुख देखें, वैसा मुख देखें, दुर्योधन दुशासन याद आ जाते हैं, फिर वो तंग करते हैं ना। रावण माने रुलाने वाले, दुर्योधन माने दुष्ट युद्ध करने वाले, इच्छा पूर्वक नहीं। कैसे? जबरियन युद्ध करने वाले, खींचा खांची करने वाले, दुशासन, दुर्योधन, दुशासन, दुशब्द लगा हुआ है। 15.5.65 की वाणी का तीसरा पीठ। तो मन में पहले रावण आता है, माया रावण मन में प्रवेश करता है, आंखों में आता है, फिर वाचा को तंग करता है, फिर हाथों से कहता है चिट्ठी लिखो दे। चिट्ठी बिट्ठी भी लिखते हैं ना, फिर सारी इंद्रियों को तंग करता है। तो किस बात में तंग करता है? बाबा कहते मुझे बताओ, मेरे को पोता मिल दो पूरा पूरा, क्या करो है, मुझे मुझे बताओ, तो फिर मैं तुमको युक्ति बताऊंगा। मुझे बताओगे तो मैं युक्ति बताऊंगा, और नहीं बताओगे तो नहीं बताऊंगा। क्यों? बाबा तो अंतर्यामी है ना, बाबा तो सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं, तो फिर युक्ति बिना बताए क्यों नहीं बताते हैं? बाबा देखते हैं कौन बच्चा सच्चा है, हैं? सच्चे तो बिठू नच्च, तो सच्चे के ऊपर राजी होंगे कि झूठे के ऊपर राजी होंगे? सच्चे के ऊपर राजी होंगे। तो कहते हैं मुझे बताओ तो फिर मैं युक्ति बताऊं। तो देखो कितने बच्चों का केयर टेकर कहते हैं शिव बाबा, सभी बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। क्या कौन बुलाते हैं? जब रावण अटैक करता है, मन के ऊपर अटैक करता है, तो मन चलायमान हो जाता है, मन वितवित करता है, दिल वितवित करता है कि नहीं? वितवित करता है माने दिल गिर गया। पतित हुआ है या पावन हुआ? पतित हुआ। आंखें वितवित करती हैं, आंखें भी पतित बन पड़ती है, विविचारी बन पड़ती है। देखना है एक बाबा को और देखती है रावण, माया रावण को। तो देखो ये इंद्रियां सारी पतित होने लग पड़ती, तो फिर पतित पावन बाप को बुलाते हैं, आओ आ करके इस रावण से हमारी थोड़ी रक्षा करो, केयर करो। बहुत गाते हैं, हे बाबा क्षमा करो क्षमा करो। अब बाबा क्षमा करे? क्यों कहते हैं बाबा से क्षमा करो? हैं? क्योंकि बाबा ही तो कहते हैं जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते मैं उनको माया बेटी भेजकर कहता हूं कि इनको खूब फटकाओ। तो माया रावण से फिर बच्चे कहते हैं मेरी रक्षा करो। अभी तुम बच्चों की किससे रक्षा करने वाला? माया रावण से रक्षा करने वाला। पांच भूत हैं, माया कोई और चीज नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बड़े कड़े भूत हैं। जैसे किसी के शरीर में घोष्ट आता है ना, तो वो घोष्ट इतना दुख नहीं देते जितना ये अंदर के आत्मा के अंदर 63 जन्म के जो घोष्ट भरे हुए हैं वो दुख देते हैं। ये माया रूपी घोष्ट बहुत दुख देते हैं, ये बहुत खराब हैं। अगर किसी के घर में कोई एक भी क्रोधी होगा तो कहा जाता है घर का मटका भी सुखाए देंगे। क्या इतनी गर्मी पैदा कर देते हैं क्रोध की। अगर एक में भी ऐसा भूत होता है तो सारे घर को धमचक्कर बना देंगे। क्रोध भी घर को बड़ा हैरान करता है। काम विकार में तो प्राइवेसी होती है, और क्रोध तो सबके सामने आ जाता है। फट से एकदम गालियां देना, धक्का मुक्की मचाना शुरू कर देते हैं। और मोह और लोभ ये भी जैसे थोड़े गुप्त हैं, इनको कहा जाता है भूत। कहते हैं इनको लोभ का भूत है, इनको क्रोध का भूत है, इनको काम का भूत सवार है। तो ये बहुत पुराने पुराने भूत हैं। कितने पुराने है? 5000 वर्ष पुराने। अरे 5000 वर्ष पुराने है, आधा कल्प, 2500 वर्ष पुराने भूत हैं। और फिर ये भूत सब में हैं, ऐसे नहीं कोई में है और कोई में नहीं है। घोष्ट कोई सब में तो नहीं होते हैं, और ये भूत सब में है। अशुद्ध सोल कोई में आकर प्रवेश करती है तो वो आत्मा ही है। कोई आत्मा ही खुद है जिसे ये रावण अशुद्ध कर देते हैं। तो ये 5 भूत हैं जिनको भगाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अच्छा, ये है विचित्र बाप की विचित्र चतुराई की बातें। और ये विचित्र बाप सबसे जास्ती विचित्र है, सबसे जास्ती चतुर है। शिव बाबा में बहुत चतुराई है। उनको कहा जाता है चतुर सुजान। क्या कहा जाता है? हैं? चतुर सुजान माने चतुर सुजान कहो, चतुर साजन कहो, बात तो एक ही है। सु माने सुंदर, ज्ञान माने ज्ञान वाला, सुंदर ज्ञान वाला। कैसे ज्ञान वाला? साधारण ज्ञान नहीं, अति सुंदर ज्ञान वाला। इसमें चतुराई बहुत है। इस शरीर में रह करके कैसे प्यार से चतुराई से अपना बना लेते हैं। किस शरीर में हैं? किस शरीर की तरफ इशारा किया? प्रजापिता के शरीर की तरफ इशारा किया। किस शरीर में रह करके कैसे चतुराई से अपना बना लेते हैं, पराये शरीर में रह करके अपना कैसे बनाते हैं? तो ये बड़ी चतुराई हुई ना, नहीं तो अपना शरीर तो इनको है ही नहीं। बड़ा विचित्र है। और पराये शरीर द्वारा कैसे कितनों को अपना बनाई लिया? ढेर के ढेर हैं, क्योंकि ये नई बात हो गई ना। वो जो श्री कृष्ण भगवान वाच है, उन श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है, मां से जन्म लिया ना, गर्भ से जन्म लिया ना, तो उनको तो अपना शरीर है। उनका तो बहुत जल्दी बन जाता है, हैं? किनका हैं? उन श्री कृष्ण का शरीर तो बहुत जल्दी बन जाता है। कितना टाइम लगता है, हैं? अरे सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा तो उनको पैदा होने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, पैदा होने में कितना टाइम लगेगा और पैदा होने के बाद भागदौड़ करने में कितना टाइम लगेगा? आजकल के बच्चों की तरह 2-4 साल लगेंगे क्या? हैं? नहीं, तुरंत दान महाकल्याण हो जाता है। यहां टाइम लग जाता है। तो देखो, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। जैसे अंबेडकर ने एक ही बात से 70,000 को बौद्ध बना दिया। ऐसी बात सुनाई दी। अगर कृष्ण हो और वो कृष्ण आकर के समझाए तो एक एक घंटे में लाखों करोड़ों आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का रूप ही बड़ा मोहिनी होता है समझाने के लिए, अपना बच्चा बनाने के लिए। समझ गए कि याद में बैठना है, इस याद में कोई आंखें बंद नहीं करनी है। बहुत मनुष्य आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, साधु लोग आंखें बंद कर लेते हैं। खास करके ऐसे भी साधु लोग होते हैं जो माताओं के आगे आंखें खोलते ही नहीं है, ऐसे भी साधु हैं जो माताएं पिछाड़ी में बैठती हैं और पुरुषों को आगे बिठाते हैं कि पुरुष लोग माताओं को ऐसे करके देख ना पावे, ऐसे करते हैं। और बाबा क्या करते हैं? माताओं को आगे कर देते हैं और पुरुषों को पीछे बैठाई दिया, खासकर काकीनाड़ा में। माने काकीनाड़ा के माताओं को बहुत आगे बढ़ाएंगे, हैं? उनकी आंखों को पक्का बनाए देंगे कि देखते हुए न देखें। अच्छा, म्यूजिक बजा, मीठे मीठे सिकिले बच्चे समझ गए हैं कि बाप हम आत्माओं को कहते हैं। मीठे मीठे बच्चे हम आत्माओं को कहते हैं। तो तुम बच्चों को टेव पड़ जावे कि वास्तव में हम बच्चे आत्मा हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, माता पिता बाप दादा। अब बच्ची तुम बाप दादा का अर्थ समझती हो, हैं? माता तो वहां बॉम्बे में बैठी है। कौन माता? 65 की वाणी है ना। 65 में मम्मा को गले में कैंसर हो गया था तो बम्बई में इलाज कराने भेजा गया, तो बोला माता तो वहां बॉम्बे में बैठी हुई है और तुम यहाँ कहते हो हम बाप दादा के सामने बैठे। तो बाप दादा का अर्थ समझती हो? मम्मा के एवज में कहता हूँ, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिले बच्चों के प्रति दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड नाइट सबको दिया। रोज याद प्यार देते हैं और बच्चे सुनते हैं और पढ़ते हैं। बच्चे तो रोज याद प्यार नहीं देते हैं, बाप दादा तो रोज याद प्यार देते हैं। हाँ, बच्चे याद करते हैं। अगर याद प्यार भेजना होता है तो फिर चिट्ठी में लिख करके भेज देते हैं। ये भी चिट्ठी में जाएगी ना, ये भी जांच करते हैं कि किन का अच्छा लव है। जो बाप को कम से कम हफ्ते 10 रोज 15 रोज में चिट्ठी लिखते रहते हैं, कोई लाचारी नहीं है लिखना, क्योंकि बाबा कहते हैं चिट्ठी लिखनी चाहिए और फिर काशी करवट खाकर भी चिट्ठी लिखनी पड़े, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लव की लहर आनी चाहिए, जैसे स्त्री और पुरुष को बड़े प्यार की लहर आती है, सामने चित्र आकर के खड़ा हो जाता है। स्त्री के सामने पुरुष खड़ा हो जाएगा, पुरुष के सामने स्त्री खड़ी हो जाएगी, याद आता है ना? तो जैसे स्त्री और पुरुष को बड़े प्यार की लहर आती है, ऐसे ही उफ ये मेरा प्राण प्यारा पति, उनको हम चिट्ठी लिख करके दे रही हूँ। जब बहुत प्यार होगा तो प्रेम के आंसू भी बहेंगे और वो चिट्ठी पर टपक जाएंगे। और जो पुरुष हैं जिनका बहुत लव होता है वो भी ऐसे ही चिट्ठी लिखते हैं, परंतु आंसू पुरुषों के बहुत मुश्किल से मिलेंगे, स्त्रियों के आंसू बड़ी जल्दी टपक पड़ते हैं, क्योंकि स्त्री का प्रेम और प्यार शायद जास्ती होता है, उन पुरुषों का इतना नहीं होता है। कितना? इतना स्त्रियों का होता है, बहुत फर्क रहता है। सदा सुखी बनाते हैं, याद में ही तुम्हारा खाता जमा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। वाराणसी शब्द है, दो शब्दों को मिलके बना है। वरुणा नदी का नाम है और असी ज्ञान तलवार धारण करने वाली गंगा का नाम है। असी माने तलवार, जो गंगा यूपी से बहकर के आती है ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर से, इलाहाबाद से बहती हुई आती है और वरुणा नदी से जब मिलती है तो वो तलवार का रूप धारण कर लेती है, तीखी हो जाती है। तो ये दो है नाम, एक वरुणा, वरुणा नाम है योगिनी माता का, बहुत गहरी नदी है और वो नदी वाराणसी के उत्तरी पश्चिमी भाग पर मुहाने में जहां गंगा से मिलती है उस भाग का नाम है काशी नगरी। वो काशी नगरी कहो, अनसुईया कहो, योगिनी कहो, वो तीनों ही नाम एक हैं। वो माता है काशी नगरी, काश्य तेज को कहा जाता है, उस काश्य को धारण करने वाला शिव है, योग का तेज जिसमें भरा हुआ है और उस योग के तेज को संपूर्ण रूप से धारण करने वाली नगरी का नाम है जो ज्ञान की नगरी कही जाती है। सारे हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे विश्व में प्रसिद्ध है ज्ञान के लिए, वो है योगिनी नदी। जिसमें ज्यादा ज्ञान होगा उसमें ज्यादा योग भी होगा, जिसमें ज्यादा योग होगा उसमें जास्ती है पवित्रता भी होगी। इसलिए दिखाते हैं कि अनुसुईया को त्रिदेवियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर की देवियां भी आकर के नमन करती हैं, अपनी माता मानती हैं। तो पहली पहली माता तो वो हो गई, वो पिता हो गया विश्व पिता। शंकर की प्यारी नगरी शास्त्रों में काशी नगरी मानी गई है और वो दोनों मिलकर के नई दुनिया की संगठन तैयार करते हैं। तो नई दुनिया के संगठन में 500-700 करोड़ को आने देंगे हैं? नहीं आने देंगे। 500-700 करोड़ तो क्या, 33 करोड़ को भी नहीं आने देंगे। 33 करोड़ तो क्या, जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं 10 करोड़ हैं उनको भी नहीं आने देते। 10 करोड़ की भी बात छोड़ो, सतयुग में आने वाली 2 करोड़ आत्माओं को भी नहीं आने देते। 2 करोड़ को भी छोड़ दो, जो सतयुग के पहले जन्म में आने वाली आत्माएं हैं कितनी हैं? 9,16,108। उन 9,16,108 आत्माओं को भी एकदम पहले पहले आने देंगे क्या हैं? उनको भी नंबर बार ही आने की अनुमति मिलती, उनमें भी जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हैं उनको पहले परमिशन मिलती है या जन्म लेने वालों को पहले परमिशन मिलती है? हैं? जन्म लेने वालों को परमिशन नहीं मिलती, लेकिन वो सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं। तो 4,500 हैं जिनको मां बाप की स्वीकृति मिलती है उनके गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, जो बोला है गीता में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म स्वभाव से, चार वर्णों की मेरे द्वारा रचना की जाती है उनके गुण, उनके कर्म, उनके स्वभाव के आधार पर। जिनके शूद्रों जैसे स्वभाव है, संस्कार है, ब्राह्मणत्व के पवित्रता के संस्कार नहीं है, व्यभिचारी बनते रहते हैं, तन से, तन की इंद्रियों से, वाचा से एक के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, ऐसी आत्माएं 4.5 लाख में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगी। प्रवेश तभी कर सकेंगी जब वो अभिविचारी बने, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। शूद्र तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। ऐसे ही वैश्य, ऐसे ही क्षत्रिय भी कौन प्रवेश करेंगे? जो पवित्रता को धारण करने वाले पक्के ब्राह्मण होंगे वो ही 4.5 लाख की लिस्ट में आ सकेंगे, जो शरीर सहित तो स्वर्ग में जावेंगे। उनका शरीर नष्ट नहीं होगा, भले बर्फ में दबा रहे।
माता जी का क्वेश्चन है में सीता वाले आत्मा पर राम बनता है, फिर अभी क्यों इसको राम बनता है? अभी इसको क्यों राम बनता है?
जो गायन है वो संगम युग का है या त्रेता का है? संगम युग का गायन है, और संगम युग में जिसका नाम अभी राम दिया गया है वो आत्मा का गायन होगा राम के रूप में, या जो त्रेता में जाके राम बनेगी उसका गायन होगा? हैं? अभी वाले राम के गायन है, जैसे अभी संगम युग के कृष्ण का गायन है, सतयुग में जन्म लेने वाले कृष्ण का गायन नहीं है, संगम युग में प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाले का गायन नहीं है। गायन किसका है? संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में जिसके साथ 16,000 गोपियों का भागवत का पार्ट रुंधा हुआ है उसका गायन है, और का नहीं हो सकता। ऐसे ही राम के लिए। और हाँ, रुको रुको, हाँ
बाबा, में दो चार चित्र रखने पड़े।
हाथ उठाओ। हाँ,
दुर्गर में दो चार चित्र रखने पड़ेगा, जैसे वाणी में बोला है।
हाँ,
दो चार चित्र हरे घर में रखना पड़ेगा करके पूर्णिमा है, वो दो सौ चित्र रखना है, क्यों बोल रहे?
दो तो लक्ष्मी नारायण ही हो गए, लक्ष्मी नारायण का परिचय देना पड़ेगा कि नहीं? इस सृष्टि के जो युगल रूप हैं लक्ष्मी नारायण, उनका परिचय तो देना पड़ेगा ना, और फिर उनके परिचय के साथ साथ उनकी जो रचना है पहली पहली कौन है? राधा कृष्ण, उनका भी चित्र रखना पड़ेगा। वो बेहद की बात है, हद के ब्राह्मणों के लिए ये चार चित्रों की बात है। और
बाबा, ये संसार के अंदर जितने भी साधु संत महात्मा हो जो घर बार छोड़ के संसार के अंदर अपना अपना जो फर्ज बजा रहे हैं, यानी किसी को ज्ञान के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, भगवत कथा का कार्यक्रम करवाते हैं, जैसे भी वो उनका जो जो है हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं, तो उनकी क्या रिजल्ट होगी बाद में?
उनकी रिजल्ट ये होगा कि उन्होंने खुद भगवान को नहीं पहचाना है, भगवान को जाना नहीं है, भगवान कब आया था, क्या किया था ये जानते भी नहीं है, प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे सकते, भरी सभा में कभी भी अपने जिज्ञासुओं को प्रश्नों का सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि खुद जानते नहीं है। कहीं ऐसा कोई ने प्रश्न कर दिया कि जवाब नहीं आया और पोल पट्टी खुल गई तो बड़ी हंसी उड़ेगी। तो खुद अंदर से जानते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, तो भी दुनिया को भगवान का परिचय देते हैं। तो वो 420 ही करते हैं या नहीं करते हैं?
हिसाब से तो देखे तो 420 ही हो चल रही है, लेकिन उनका जीवन तो व्यर्थ हो गया था।
व्यर्थ हो गया
पूरा जीवन जिन्होंने घर बार छोड़
दिया। इसीलिए तो गीता में कहा है वो परित्राणाय साधूनां, उन साधुओं का उद्धार भगवान आकर के करता है। और
लेकिन कार्तिकेय को दो पत्नी है, गंडीय और देवाणी,
क्या हुआ?
निमित्ती मात्र कैसा हो गया, निमित्त मात्र हो गया।
अरे जितने भी सन्यासी होते हैं पहले शादी करते हैं या नहीं करते हैं? है? पहले गृहस्थी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। बाद में जीवन भर साथ निभाते हैं। अरे संबंध जोड़ना बड़ी बात है या जीवन में संबंधों को निभाना बड़ी बात है? है? पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला किसे कहेंगे? निभाने वाले को पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे। और बाबा ने कहा है तुम बच्चे हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। पक्के का मतलब चाहे संगम युग में कितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आ जाएं, तुम इस बात से कभी इनकार नहीं करेंगे कि लक्ष्मी ही नारायण की पत्नी है असलियत में, बाकी सब धोखा देने वाली है। भले यज्ञ के आदि में कोई भंगी नहीं आती थी, सबके सामने सभा में बाबा के गले में आते ही लिपट जाती थी। पत्नी का व्यवहार करती थी कि नहीं करती थी ना? फिर क्या हुआ? उसके संबंधी आए और उठा के ले गए, उसने कोई अपोजिशन नहीं किया। आज में भी ऐसे ही हुआ और एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी ऐसे ही हुआ। जगदम्बा माता से भी पहले कोई एक कन्या निकली दिल्ली में, इसलिए दिल्ली के दो भाग हैं, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। नई दिल्ली तो अंग्रेजों ने बसाई, लाल पत्थरों की बनी हुई है। लाल रंग किस बात का सूचक है? हैं? क्रोध का सूचक है, महाकाली का रूप धारण कर लेती है। चलो वो जगदम्बा की बात, लेकिन उससे भी पहले कोई निकली थी जिसने थोड़े समय का साथ निभाया, बाद में धोखा देकर चली गई। ऐसे ही जगदम्बा आई, जगदम्बा भी चली गई। क्या विरोधाभास था? यही विरोधाभास था। सारा मुकाबला हम ब्राह्मणों की दुनिया में मैं करती हूं और लक्ष्मी आकर के स्वर्ग में राज्य करेगी। तो ये मुकाबला तो करना पड़ता है प्रवृत्ति मार्ग वालों को। जो सच्चे प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे वो आदि से अंत तक प्रवृत्ति को निभाएंगे, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी। और
वो शकुनी है ना, शकुनी पांडव के साथ इतना निरंतर करते हैं। शकुनी शक्ति पांडव है ना, वो पांडव के साथ बहुत विरोध
करता है। वो इसीलिए विरोध करता है कि जो उसकी बहन गांधारी थी, वो गांधारी का विवाह अंधे के साथ नहीं करना चाहता था। और उसके पिता ने गांधारी को स्वीकृति दे दी और गांधारी ने भी धृतराष्ट्र को खुशी खुशी अपना लिया। इस बात से शकुनी को बहुत धक्का लगा और वो पांडवों का क्या बन गया, दुश्मन बन गया। इनको नीचा दिखा के रहूंगा जिंदगी। तो जीवन में ढेर के ढेर शकुनी ने बिगन डाला है। और
धृतराष्ट्र ने शादी किया
है, गांधारी ने क्या किया,
धृतराष्ट्र ने शादी किया है, वो फिर पांडव के पास क्यों एनिमिटी में
है, पांडवों के साथ
क्यों वो झगड़ा करता है, क्यों उसको नीचे दिखाता है,
बता दिया ना,
और कोई नीचे दिखाई कर,
वो जानता है ना कि मैं तो धृतराष्ट्र की ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसा विरोध करूंगा। तो पांडवों का भी प्रत्यक्ष दुश्मन और परोक्ष रूप में कौरवों का भी दुश्मनी थी उसके अंदर, वो धृतराष्ट्र का भला नहीं चाहता था। और सूक्ष्म शरीर माने मानसिक रूप, मन जो है वो दसों इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो इंद्रियां शरीर में रहती हैं या नहीं रहती हैं? हैं? रहती हैं। लेकिन शरीर के अंदर जो दस इंद्रियां हैं उन दस इंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्ति है वो मन अपनी मुट्ठी में रखता है और गर्भ में जाके प्रवेश करता है। दसों इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति मन के साथ जाती है। मान लो किसी ने टांग से बड़े विकर्म किए हैं, बहुतों को लात मार मार करके नीचे गिराया है, तो जो पांव की, पांव इंद्रिय है ना, उस इंद्रिय से जो उसने पाप कर्म किया है वो पाप कर्म उस इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रिय के साथ ही गर्भ में जाता है और वो लंगड़ा पैदा होता है। इंद्रियों का राजा है मन।
बाबा हर एक शरीर के अंदर
सूक्ष्म शरीर, बिल्कुल है। रात में जब आप सो जाते हैं, हम सो जाते हैं, तो रात में शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता है और हम चारों तरफ दुनिया में घूमते हैं शरीर की कर्म इंद्रियों को लेकर के, शरीर को लेकर। ये क्या है, क्या शरीर वहां जाता है, कौन जाता है? सूक्ष्म मन और सूक्ष्म इंद्रियां जाती है, सूक्ष्म शरीर जाता है।
आत्मा नहीं जा सकता
है,
आत्मा इसका संबंध क्या है?
मन रे आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। और
उसका वर्ण क्या
है,
आत्मा और शरीर सूक्ष्म शरीर का वर्ण क्या होता है?
वर्ण कलर, कलर
वो प्रकाश है। जैसे आत्मा प्रकाश युक्त है वैसे शरीर भी प्रकाश का है, इंद्रियां भी प्रकाश की है। स्थूल तत्व उसमें नहीं होता है, पांच स्थूल तत्व इंद्रियों में भी नहीं, पांच स्थूल तत्व सूक्ष्म शरीर में भी नहीं और मन में भी नहीं। ये अंतर है, शरीर प्रकाशित नहीं है स्थूल, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रकाशित है। प्रकाश का वर्ण नहीं देखा, बल्ब को देख लो।
हाँ
तीन बाबा बैठे हैं ना, उनको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था उनको कितना समझाते थे कि अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ, बजिया बाबा के पास जाती है।
हाथ उठाना, हाथ उठाओ। हाँ, संपूर्ण बाबा तो संपूर्ण पुरुषार्थ होगा तब ही प्रत्यक्ष होगा, उससे पहले छोटा बाबा अलग, बड़ा बाबा अलग, छोटा बाप अलग, बड़ा बाप अलग, मनुष्यों का बाप अलग है, आत्माओं का बाप अलग। जब संपूर्ण हो जाएगा तो सब मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और ओम शांति।